ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अठारह अध्याय श्लोक 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा फरमा रहे हैं। अर्थात ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में तिष्ठति, तिष्ठति मतलब विराजमान है। भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। विराज होकर भगवान क्या कर रहे हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि। भ्रामयन मतलब, भ्रामयन शब्द का अर्थ है भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ, मतलब घुमा रहे, ऐसे घुमा भरमा रहे, भ्रामयन। और यंत्र रूढ़ानि, एक यंत्र में बैठा कर, एक यंत्र में सवार बनाकर, वो यंत्र कौन है? ये शरीर, ये शरीर रूपी यंत्र में सवारी बनाकर भगवान हर जीव को इस भौतिक जगत में घुमा रहे हैं। मतलब ये शरीर हमें मिल रहा है, किस कैसे ये शरीर किस किसकी प्रभाव से ये शरीर मिल रहा है, ये शरीर प्राप्ति के कारण है हमारा कर्म। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें अगला शरीर मिलता है। तो ये शरीर में बैठा कर परमात्मा श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव को अपने कर्म की फल प्रदान कर रहे हैं। श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, अर्जुन परम ज्ञाता न था अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तथा उसका क्षुद्र विवेक तक उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं श्री कृष्ण अंतर्जामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों के भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्य का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वो अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है, भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो। और अगले श्लोक का ये आदेश है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है ना। सही रूप से पता चल गया भगवान है हृदय में। भगवान बाहर भी है अंदर भी। भगवान हर जीव के हृदय में ऐसे विराजमान है। वैसे परमात्मा इनमें के रूप में विराज करके अवस्थान करके भगवान क्या कर रहे हैं, हर जीव को अपने कर्म के फल प्रदान कर रहे हैं। जैसे हम कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमें उसका फल मिले। कभी नहीं यह सोचना कि मैं कार्य कर रहा हूं और इसका कोई विचार करने वाला नहीं है और उस कार्य के अनुसार फल प्रदान करने वाला कोई नहीं है, भगवान स्वयं ही कर रहे हैं। अंतर्जामी के रूप में भगवान साक्षी के रूप में विराजमान। भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान तो भोक्ता है, प्रभु है, बल्कि हर जीव के हृदय में साक्षी के रूप में भी विराजमान। साक्षी मतलब भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं और भगवान नोट करके रख देते हैं और उसके अनुसार उसका फल हमें मिलेगा। जब हम भला काम करते हैं तो उसका फल कैसा होगा? भला काम का परिणाम क्या होगा? भला काम का परिणाम या फल भला हो और बुरा काम का परिणाम बुरा हो। भला काम के कारण, भला काम के फल स्वरूप हमें इनाम मिलेगा और बुरा काम के फल स्वरूप हमें सजा मिलेगी। और इसका साक्षी कौन है? भगवान स्वयं। और इसका विचार करने वाला भी भगवान स्वयं। साक्षी भी है और विचारक भी। तो अब हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, है ना? मतलब बुरा काम करने से अगर सजा मिलेगा, कष्ट मिलेगा, कोई कष्ट चाहता है? कष्ट भोगना चाहते हो कोई? तो क्या करना चाहिए? बुरा काम नहीं करना चाहिए। और तुम लोग सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, भोग चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भला काम करना चाहिए। और सबसे बेहतर काम क्या है? सबसे बेहतर कार्य है जो अगला श्लोक में भगवान बताया, तमेव शरणं गच्छ, तुम मेरे शरण में आ जाओ। भगवान के शरण लेना ही सबसे बढ़िया कार्य है। हम अगर भगवान को शरण ले लेते हैं तो हमें भगवान हमारे सारे देखभाल करते हैं। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे, ये तो हम 61 श्लोक का विचार किया, 66 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? किसको याद है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने सारे काम हैं, जितने सारे कर्तव्य हैं, उसका जरूरत नहीं है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ। मतलब भगवान को शरणागत होकर काम करना चाहिए, तब क्या होगा? अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, पाप कर्म के लिए सजा मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जितने सारे पाप काम तुम किए हो उसको मैं रद्द कर दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा और उसको भोगना नहीं होगा। मतलब भगवान को शरण लेने से और कोई कष्ट, कोई कठिनाई नहीं रहेगी। और उसके अतिरिक्त क्या होगा? हमें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। जैसे लड़का अगर पिता को शरण ले लेता है तो पिता लड़का लड़की का सारे देखभाल करते हैं। पिताजी जब प्रसन्न होते हैं तो पिताजी इनाम देते हैं बच्चे को। केवल इनाम ही नहीं, सारे कुछ का ये देते हैं, संभालते हैं। तो अगर हमारे ऐसे पिता हैं जो सारे संसार के मालिक हैं, उनको हम शरण ले लेते हैं तो क्या होगा? भगवान हमारे सारे देखभाल करें। इस विषय में कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, पूर्ण विश्वास लेकर भगवान को शरण। और भगवान को शरण लेने से उसका जो फल होता है वो हम खुद अनुभव करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं बस और सारे कठिनाई दूर हो जाते हैं। हुआ है भक्ति मार्ग में आने से, भगवान को भक्ति करने से, भगवान को शरणागत होने से फायदा मिल रहा है, फायदा हो रहा है ना, क्या कठिनाई मिल रही है? कठिनाई मिल रहा है। ओके, ऐसे भगवान को शरणागत होकर भगवान को सेवा करते हैं। सबसे पहले ये विश्वास रखना चाहिए भगवान है, केवल है ही नहीं, भगवान हमारे हृदय में है। देखो कितना नजदीक है भगवान, तो उनको पास जाना क्या क्या कठिन होगा जो हमारे इतने नजदीक है, एक कदम भी लेना नहीं होगा, बस उनके और हमको मुंह फेरना, बस केवल ये आप है, आप सब सारे संसार को संभाल रहे हैं और आप मेरे भी संभाल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं आपके लिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। भगवान आप तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, बल्कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जैसे बच्चा पिताजी के पास जाकर बोलता है पिताजी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एक छोटा बच्चा अगर पिताजी के पास जाकर ऐसे बताए तो पिताजी का मनोभाव कैसा है? तो वैसे ही जब हम भगवान को शरण लेते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। इस भावना लेकर, इस विश्वास, सुदृढ़ विश्वास के साथ भगवान को शरणागत होना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ क्या हुआ सुन रही? भगवान को शरण लेकर, शरण लेने का मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ करना नहीं है, करना है, बल्कि जो कुछ करना है भगवान को शरणागत होकर करना। भगवान को शरण लेकर मतलब सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे पेड़ का जड़ में पानी डालने से क्या होता है, सारे पेड़ का पानी मिल जाता है, वैसे ही जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो उससे सबको सेवा हो जाती है। कार्य करना है, कार्य भगवान खुद गीता में कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्य किए बिना हम क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकते। कार्य हम सबको ही करना पड़ता है, बल्कि यहां भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे शरणागत होकर कर, मेरे शरण लेकर कर, अर्थात भगवान के सेवा के लिए करना जो कुछ करते हो। जैसे देखो हर व्यक्ति को खाना हो, खाना पड़ता, खाने के लिए पकाना पड़ता है, तो भगवान का शरणागत होकर करने का मतलब है जो खाना हम पका रहे हैं सो भगवान को पहले भोग देते हैं, भगवान को निवेदन करके, भगवान को खिलाकर पहले उसके, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर। ऐसा नहीं कि हमको खाना बंद करना है, पकाना बंद करना है, सब कुछ होगा, खाना भी चाहिए पकाना भी चाहिए, बल्कि भगवान के सेवा के क्रम से इसको। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे गंगनारे। जो काम हम करते हैं वो सही रूप से करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान के लिए ही पढ़ाई करना चाहिए। जो करना है करना होगा, बल्कि भगवान को केंद्र बनाकर करना चाहिए। ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसका भी फल सुफल है, पढ़ाई जब हम कर रहे हैं, वैसे ही जो कुछ अगर हम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भगवान के सेवा के लिए करना, पढ़ाई भी वैसे भगवान के सेवा के रूप में ही करना चाहिए। अगर पढ़ाई में नेग्लेक्ट होगा तो क्या होगा? लोग बोलेंगे देखो भक्त बनकर जिंदगी बर्बाद कर। परंतु अगर बहुत अच्छा से पढ़ाई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट किया तो लोग बोलेगा देखो भक्त बनने के बाद इसका कितना परिवर्तन हो गया, कितना अच्छा बन गया। पहले सेकंड क्लास मिलता था, थर्ड क्लास मिलता था, अब फर्स्ट क्लास मिल गए। भक्त बनने से फर्स्ट क्लास बन गए। जो भक्त है वो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब जो कुछ करते हैं वो भी फर्स्ट क्लास होता है। ठीक है बच्चे लोग, पढ़ाई ठीक से हो रहा है? देखे मांगता है, माँ को पूछू, रिजल्ट तो हमको दिखाई नहीं रहे हो। पहले तो रिजल्ट दिखाता था, आजकल तो वो भी बंद कर दिया। ठीक है, रिजल्ट दिखाना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स शो मी योर रिजल्ट। जो कार्य कर रहे हैं वो भक्ति के नाते ही कर, भगवान की कृपा, भगवान के सेवा के रूप में कर, तभी सब कुछ सुंदर बनेगा। जब जैसे मैं बोला जो फर्स्ट क्लास है, भक्त बनने से आदमी कैसे बनते हैं? फर्स्ट क्लास बनते हैं या थर्ड क्लास बनते हैं? फर्स्ट क्लास बनते हैं। तो फर्स्ट क्लास का मतलब है उनका कार्य जो है वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जो कुछ करते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है, हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे।